أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن حدیث نمبر 112 اور کتاب الوضو سے شروع ہوگا. کتاب کا پیج 148 ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک. باب نمبر 3 ہے لا یتودعو من الشک حتی یستیقینا. لا نہیں یتودعو وضو کرے من سے الشک کی شک حتی یہاں تک کہ یستیقینا یقین ہو جائے, یعنی شک سے وضو نہ کرے یہاں تک کہ حدث کا یقین نہ ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا کہ جب انسان کو شک ہو کسی چیز پہ کہ میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں, وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں, تو پھر اس پہ وضو نہ توڑے. ابھی پڑھیں گے حدیث تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی بات. ان عبداللہ ابن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن زید انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا حال بیان کیا. کیا کہا اس کا؟ شکا جو ہے نا شکایت کرنا, وہی مطلب ہے شکوا شکایت. یعنی ایک شخص کے بارے میں یہ بات آپ نے بیان کی. وہ کون سا شخص تھا؟ الرجل الذی یخیل الیہ. یہ وہ شخص تھا جس کا خیال تھا اپنے بارے میں انہ بے شک وہ یجد الشیء فی الصلاۃ پاتا ہے کوئی چیز نماز میں. اشارہ ہے کہ اس کو نماز میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میرے جسم سے ہوا خارج ہو گئی ہے. تو سوال کیا کہ وہ کیا کرے. یہ آپ کے بھی کوسچن تھے پچھلے سیشن میں کہ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقالا, تو آپ نے فرمایا لا نہیں ین فتل, نہ وہ پھرے, او یا لا نہیں ین صرف وہاں سے ہٹے, یعنی نہ تو وہ نماز چھوڑے نہ اس جگہ سے ہٹے. حتی یسمع صوتاً او یجد ریحاً, یہاں تک کہ اس کو آواز آ جائے یا پھر اس کی بدبو کو پالے. دیکھیے اتنا خوبصورت کرائیٹیرین اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا کہ وضو کب ٹوٹتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جسم سے ہوا خارج ہونے کی نشانی. نمبر ایک کہ آواز آتی ہے, تھوڑا سا پریشر کے ساتھ جب نکلتا ہے جسم سے کچھ تو آواز آتی ہے. آواز آ جائے پھر سمجھیں گے کہ آپ واقعی جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے. اور دوسری چیز ہے اگر آواز نہیں آتی تو بیڈ سمیل, جو ایک سب جانتے ہیں کہ جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں اور گندگی, اس کی وجہ سے آتی ہے. تو بدبو خود کو محسوس ہو یا آواز آئے پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے, محض شک کی بنا پر نہ ہو. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے کہ شک کیوں ہوتا ہے؟ کیا نماز میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے جبکہ نہ ٹوٹا ہو؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار کہا کہ دشمن ہے تمہارا شیطان جو تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے. شیطان نے اس چیز کی قسم کھائی تھی کہ اس نے انسان کو جنت سے دور کرنا ہے, لہٰذا وہ دن رات سوتے جاگتے ہر وقت میں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب ایک انسان وضو کرنے لگتا ہے تو اس کو وضو ملجھا دیتا ہے. کبھی اس کو کہتا ہے کہ تیرا تو ابھی وضو ہی نہیں ہوا, کبھی اس کو وسوسوں میں ڈال دے گا, کبھی کچھ, کبھی کہے گا ابھی تو تجھے واش روم میں جانا ہے. اور آپ خود پرسنلی فیل کریں کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے واش روم یوز کرتے ہیں تو آپ کو پیشاب کرنے کے بعد دوبارہ پھر فیل ہوتا ہے. ابھی اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں لگتا ہے کچھ رہ گیا, پھر کرتے ہیں. وہ اصل میں ٹال رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کا وقت ٹل جائے. پھر آپ بیٹھتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. پہلے وہ آپ کو وضو سے روکتا ہے, یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے. پہلے تو ویسے ہی نہیں بڑھنے دیتا نا یہ کہہ کر کے جی نمازیں تو معاف ہیں اور ہم تو بہت نیک ہیں اور لائک دیس, اور نمازوں سے کیا ہوتا ہے. خیر جب ایک بندہ ارادہ کر کے بیٹھ ہی جاتا ہے تو پھر ہو گیا, وضو کرنے میں الجھا دیا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اتنا وضو میں الجھاتا ہے کہ اس کو کہتا ہے تیرا تو یہ حصہ ہی نہیں خشک, تیرا تو حصہ ہی نہیں گیلا ہوا. وہ پھر بیچارہ وضو کرتا ہے, پھر کہتا نہیں تیری کونیاں خشک ہیں. وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ اس کی جماعت کی نماز چلی جاتی ہے. خیر بندہ وضو کر کے نکلتا ہے, جائے نماز پہ کھڑا ہونے لگتا ہے, پھر شیطان آ جاتا ہے, کبھی وسوسے کبھی کچھ. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو بس اب وہ دشمن کیا کرتا ہے, وہ آپ کے پاس کیسے آتا ہے, یہ جسم میں ہوا بنتا ہے, پھر آتا ہے. وہ جان کی آوازیں نکالے گا, اچھا پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے. دو چیزیں بہت زیادہ فیل کریں گے نماز کے ساتھ ہی. ایک تو یہ کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں جو سارا دن ادھر ادھر کھیلتے رہیں گے, ان کو کیئر ہی نہیں ہے, جس وقت آپ نماز شروع کریں گے نا وہ آپ کے صف کے آگے سے بھاگیں گے. آپ جا کے آزمائیے گا. اسکول میں بھی یہی چیز ہے, مسجدوں میں بھی یہی چیز ہے, گھروں میں. یہ شیطان لے کے آتا ہے. वो चाहता है कि जी बच्चा रोने लग जाता है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि बच्चे को रुला देगा, यानी उसकी पूरी कोशिश है कि आपकी नमाज से तवज्जो हट जाए। खैर, अब जिस्म से हवा की वो ऐसी आवाजें करता है तो बगैर किसी वजह के सिर्फ पेट में अगर आपको कुछ फीलिंग आ रही है, ये समटाइम फील भी होता है कि शायद जिस्म से कुछ निकला, तो उससे नमाज नहीं तोड़े जब तक कि ये ना हो। और आप लोगों ने फील किया होगा, बल्कि आप फील कीजिएगा, जिन सिस्टर्स को इस तरह की तकलीफ होती है जिस्म से हवा निकलने की या कुछ, जब ऐसी हालत होती है ना तो उसमें आवाज आती है ना बू आती है, तो फिर आप उसको इग्नोर कीजिए, उस पर ज्यादा बात ना कीजिए। तो यकीन के साथ ये काम करना है। यहां से एक और बात पता चलती है कि हमारा दीन जो है ना यकीनी चीजों पे पीछे लगाता है, महज शक और वहम की हमारी नमाज में कोई जगह नहीं है और इससे ऊपर रखना चाहिए। और जो बंदा शक करता है ना उसको हर चीज में फिर गलत चीज नजर ही आ जाती है। तो अपने आप को अल्लाह ताला ने हमेशा इंसान को बहुत इजी गोइंग फील करवाया है, और ये नहीं कि सरा हर वक्त इसी बोझ में पड़े रहो। अच्छा, हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू क्यों बनाते हैं? मैं किसी मतलब बदगुमानी के से हट के ये बात करूंगी, नमाज रोजा हज ज़कात ये दीन के पिलर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये दीन की मुराद नहीं है। दीज आर द टूल्स, दीज आर नॉट द मंजिल, या आप कह सकते हैं कि ये हमारा आखिरी मुदा या जो चीज़ मतलूब है वो नहीं है। नमाज रोज़ा हज ज़कात के जरिए अल्लाह ताला हमें तैयार करता है कि हम अल्लाह के हुक्मों को भाग भाग के लें, हम दुनिया में अल्लाह के पैगाम को आम करें, हम नबी के मिशन पे चलें, हम दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करें। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, जो अल्लाह ने नबी से काम लिया था कि पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन गालिब हो। हम सबसे अल्लाह ये चाहता है। अच्छा, शैतान क्या करता है? और उसमें मदद हो जाती है उनकी, उन बहुत महदूद तरीके से दीन की सोच रखने वाले दीनदारों से, जो हर वक्त नमाज रोजे को असल बनाई रखते हैं। वजू इधर करो, पानी मिट्टी के लोटे से करो, बैठ के करो, किबला रुख करो, साबुन नहीं लगा सकते, बेरी के पत्तों से करो, और वजू करते हुए यूं करो, पाँव ऊपर रखो, नीचे रखो। इतना उसमें लग गया कि उम्मत को आज लग रहा है सिर्फ नमाज के ही मसले हैं, सिर्फ हज के ही मसले हैं, रोजे के ही मसले हैं। दीन मसाइल का नाम नहीं है, मसाइल से निबटने का नाम है। अगर आप नमाज की छोटी छोटी चीजों को इतना उलझाते हैं कि उस पर आज उम्मत बट गई, आज आप देखिए हमारे फिरके क्यों बन गए इतने। अमूमन फिरके में फर्क नमाज का, और नमाज में कोई ये नहीं कहता फर्ज ना पढ़ो, कोई ये नहीं कहता रुकू ना करो, क्याम ना करो, सब मानते हैं। बहस किस में कि क्याम करते वक्त हाथ किधर बांधो और सजदा कैसे करो। तो जब आप हदीस में एक तरीका पढ़ लेते हैं तो रिलैक्स, ईजी गोइंग, इससे बढ़ के आगे चलो। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी कि अगर किसी को पता चले कि दुश्मन आ गया सरहद पर, अब उसको क्या करना है? दुश्मन का मुकाबला करना है ना, कि किसी भी तरह वो उस दुश्मन को मुल्क के अंदर आने से रोक सके, दैट्स इट। अब वो इसमें पड़ जाए कि दुश्मन के लिए तीर खरीदूं, कि तलवार खरीदूं, कि मोटी खरीदूं, कि पतली खरीदूं, किस कंपनी की खरीदूं, किस ब्रांड की खरीदूं, दुश्मन आएगा उतने देर में आपको मार के चला जाएगा। आज उम्मत के साथ ये हो रहा है, माजरत के साथ, यानी आज हम इतने छोटे छोटे मसलों में उलझ गए कि हमने लोगों को सिर्फ दीन की इंतहा नमाज बताई, हालांकि ये इब्तदा थी। यानी वो चीजें जो पीक थी, पीक नहीं थी, बेस थी जिस पे दीन खड़ा होता है, आज उम्मत उससे गाफिल है, और इसीलिए ऊपर से सारा मामला बिखरा हुआ है। जिस दिन नमाज रोजे हज ज़कात को असल रखे, मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, हाँ सल्लू कमा रही तू मोनी असली, नबी ने कहा जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते वैसे पढ़ लो, दैट्स इट। तो बहुत छोटी छोटी बहसों में पढ़कर फिर आप इसमें बहसें नहीं करनी चाहिए, इल्म ले लें। अभी आप हदीस से ये पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने जिंदगी दी, आपको नमाज की बुक भी पढ़ा देंगे। एक एक हदीस एक एक मसला जो वो हदीस से अखज है, 2-3 महीने में आप अपनी नमाज को एक्सीलेंट दर्जे पे अल्लाह के नबी की नमाज के बराबर कर दें, दैट्स इट, फिर कान बंद। उसके बाद अगर कभी आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये हदीस इस पे मैं आज से 4 साल से अमल कर रही हूँ, अब आज की रिसर्च से कुछ अल्लाह ने इल्म वाले ऐसे उठाए कि वो कहते हैं कि इस हदीस में ये ज़ोफ़ है, ये ठीक है, हदीस है, यकीन है, सच्ची बात है, वो ले लेंगे, दैट्स इट। हम इन बातों को बहस ना बनाएं, नंबर एक, झगड़ों का जरिया ना बनाएं, पब्लिकली कभी डिस्कस ना करें, घरों में, शादियों में, महफिलों में। आज वो औरतें मर्द भी आपस दूसरों के नमाजों के मसले बता रहे होते हैं जिनको पूरी नमाज की शायद एक दफा भी हदीस से पढ़ने की का मौका नहीं मिल सका। तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी बातों पर फतवे नहीं देने चाहिए। अगला बाब देखिए, तख़फ़ीफ़ फ़िल वुदू, हल्का वजू करना। अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। अब यहां हुमा क्यों आया, सब बता दें, एक ही साथ बोल दें। मैं नए लोगों के लिए ऐसी बातें दोहराती हूं ताकि वो भी इंजॉय करें। जी बताइए, स्क्रीन को देखिए, इबन कौन है? बेटा अब्दुल्ला। अब्बास कौन है? बाप, बेटा भी सहाबी हो और बाप भी सहाबी हो तो दोनों का नाम आ जाता है। यानी जो सहाबी ऐसे जिनके बाप भी मुसलमान थे तो उनके नाम के साथ रदी अल्लाह अनहु की जगह रदी अल्लाह अनहुमा आता है। कितने खुशकिस्मत बेटे हैं कि जो अपने बाप के साथ भी इसी सनत को लगवाते हैं। क्या कहा उन्होंने, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामा, बेशक नबी सल्लम सो गए। ये जो नामा का लफ्ज है, नम नौम, नौम किसको कहते हैं, नींद को। कहाँ लिखा है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, आयतुल कुर्सी में, कि अल्लाह को ना ऊंग आती है ना पकड़। और नौम जो होता है ना, नींद का इब्तदाई दर्जा ऐसा होता है, ला ताखुज़ुहु सिना होता है इब्तदाई दर्जा जिसको आप ऊंग कहते हैं, और नौम होती है गहरी नींद। नौम के मिलता हुआ कोई लफ्ज आपने और भी पढ़ा, जिन्होंने आयतुल कुर्सी की तफसीर सुनी है उनको याद आएगा, वो क्या होती है, नियाम। नियाम क्या होती है, जिसमें तलवार का कवर, तो तलवार नियाम में जाके सो जाती है क्योंकि अब वो काम नहीं करती। जैसे मेरे पास भी घर में एक छुरी है जिसका ऊपर कवर है, कवर में डाल दें तो वो ज़ाहिर सेफ हो गई, तो वो भी यही लफ्ज़ है कि अल्लाह के नबी सोए, हत्ता यहाँ तक कि नफखा, उनकी आवाज़ उबरने लगी, यानी खराटे आने लगे। नफखा का मतलब होता है आवाज़, जैसे थोड़ी सी गुरगुराहट है ना, तो मुराद ये कि आप इतनी गहरी नींद सोए कि खराटे भरने लगे। थुम्मा सल्ला, फिर आपने वजू, फिर आपने नमाज पढ़ी, वलम यतवद्दा, फिर वजू भी नहीं किया, व रुब्बमा, और ऐसा फिर भी हुआ, यानी आपने नमाज पढ़ी वजू भी ना किया। और कहते हैं कैसी बात हुई, काला, फिर कहा, इस तजा हत्ता नफख सुम्मा काम फसल्ला, फिर कहते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ कि आप करवट पर लेटे यहां तक कि सांस की आवाज आने लगी, फिर बेदार हुए तो आपने नमाज पढ़ी। अब इस हदीस से क्या पता चलता है, पहली बात देखिए कि नबी सल्लम खराटे भरने लगे और उठकर आपने बगैर वजू के नमाज पढ़ी। फिर रावी कहते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी करवट पर लेटे, यदि पहली सूरत ही बैठ के दूसरी सूरत ही लेट के, और आपकी आवाज भी, फिर उठे तो नमाज पढ़ी। अब इससे हमने तो भी ये बात पढ़ी है, आगे पढ़ेंगे, इसमें आपने तो नहीं अभी पढ़ी, लेकिन ये कि सोने से वजू टूट जाता है, नबी सल्लम का क्यों नहीं टूटा, इसके बारे में हदीस से पता चलता है। अल्लाह के नबी के जब मेराज का मौका था तो उसे एक रात पहले चंद फरिश्ते आए, तो उन्होंने अल्लाह के नबी को डायग्नोज किया कि अच्छा ये हैं वो जिनको हमने लेके जाना है। तो उस वक्त उन फरिश्तों ने आपस में जो बात की थी उसमें एक बात ये थी कि ये नबी है कि जिसकी आंख सोती है लेकिन उसका दिल नहीं सोता, या दिल सोता है तो आंख नहीं सोती। तो अल्लाह के नबी सल्लम गाफिल होकर नहीं सोते थे। आम इंसान अगर ऐसा गहरा सो जाए कि खराटे आने लगे, लेट गए, तो फिर उसका वजू टूट जाता है। ठीक है, तो यह हमारे लिए क्या बात है कि इस तरह से कभी मामला हो। फिर इसमें आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इब्ने अब्बास एक और रिवायत में कहते हैं कि आप जब उठे तो आपने पानी से भरे हुए एक पुराने मशकीजे से हल्का सा वजू किया, यानी आज़ा पर ज्यादा पानी नहीं डाला या अपने आज़ा को सिर्फ एक बार धोया। तो ये दोनों बातें मौजूद हैं, कभी एक अमल हुआ कभी दूसरा हुआ। अगला बाब देखिए, इस बाग़ुल वुज़ू, मुकम्मल करना वुज़ू को, अच्छी तरह से वुज़ू को करना। अन उसामा इब्ने ज़ैद रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अरफ़ा, अल्लाह के नबी सल्लम लौटे अरफा से, यानी एक दफ़ा अरफा से लौटे। आपका अरफा कौन सी जगह, अरफात, यानी जहाँ हज किया जाता है, और यकीनन ये वही वक्त होगा जब आप हज्जतुल विदा से आए थे, आपने पूरी जिंदगी में एक ही हज किया था, उसके बारे में ये जिक्र है। हत्ता यहाँ तक ईजा, जब कान थे वो भी शाह भी एक घाटी के पास, शाह कहते हैं घाटी, तंग सी जगह होती है पहाड़ियों में, नजला फिर उतरे पेशाब भी उस घाटी के पास, फबाला फिर पेशाब किया। जो बाला का लफ्ज है ना, पेशाब करना, यूरिनेट करना, बॉल कहते हैं अरबी जुबान में पेशाब को। सुम्मा फिर या तवद्दा, फिर आपने वजू किया, लम वलम नहीं युस्बिगुल वुदू, और फिर पूरा वजू नहीं किया, यानी थोड़ा सा वजू किया। फकुल्तु, तो मैंने कहा, अस्सलातु या रसूल अल्लाह, क्या नमाज का वक्त हो गया। फकाला, अस्सलातु अमामका, आपने फरमाया नमाज आगे जाकर पढ़ेंगे। मुराजे के भी वक्त तो नहीं हुआ लेकिन आपने वक्त से पहले वुजू कर लिया और लोग उनको बताया कि आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फरकीबा, फिर वो सवार हो गए। रकीबा से मुराद होता है खासतौर पे ऊंट पे या सवारी पे सवार होना। फलम्मा, फिर जब जाल मुजदलिफा था, फिर आप पहुंच के मुजदलिफा में, नजला, आपको पता है ना कि मुजदलिफा ही जाते हैं ना अरफात से, तो हज्जतुल विदा का मौका है, आप वहां से पहुंचे मुजदलिफा, फिर आप उतरे, फतवद्दा, फिर आपने दोबारा पूरा वजू किया, फस वगल वजू, बहुत अच्छी तरह वजू किया, सुम्मा उकीमत इस्सला, तो फिर इकामत कही गई नमाज की, यानी तकबीर कही गई, फसल्लल मगरिबा, फिर आपने मगरिब पढ़ी, सुम्मा फिर अनाखा, फिर सुम अनाह कुल्लु इंसान बईरा तो फी मंजिलती, फिर बांध दिया हर एक ने अपने ऊंट को उसकी जगह पर, यानी ऊंट जो सुबह से चल रहे थे उनको एक जगह पे बिठा दिया। सुम फिर उकीमतिल इशाओ, फिर कायम की गई ईशा, फसल्ला फिर यानी इकामत कही गई ईशा की, फसल्ला फिर नमाज पढ़ी, वलम और नहीं युसल्ली बैनहुमा, उनके दरमियान कुछ और पढ़ा। अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि नमाज के आने से पहले, वक्त से पहले वजू किया जा सकता है और ये पसंदीदा अमल है। हदीस में आता है कि जब इंसान वजू करके इंतजार करता है तो उसका अजर शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को फारिग करने के लिए एक कोने का इंतखाब किया, शाब यानी घाटी या गढ़ा, तो सरेआम ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अरब लोग बिल्कुल खुलेआम सामने बैठकर ऐसी हाजात से फारिग होते थे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। फिर दूसरी बात है कि सफर था तो आपने वजू पूरा ना किया, यानी हल्का सा वजू किया। असल में ये जो हदीस है ना, ये आपको बता रही है कि वक्त की मुनासबत से आप वजू हल्का भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। हल्के वजू से मतलब होता है कि बस एक ही दफा आपने हर रोज को धोया, और पूरा भारी करना पूरा क्या, यानी तीन दफा करके करना। और इंशाल्लाह हम इसके तरीके में पढ़ेंगे कि एक दफा जिसने किया उसका वजू पूरा होता है, ज्यादा से ज्यादा तीन है, तीन से ज्यादा दफा कोई जगह नहीं धोई जा सकती। फिर इसमें एक और चीज पता चलती है कि सफर में भी अल्लाह के नबी नमाज का एहतमाम करते थे। कौन पढ़ेगा सफर में नमाजें? जो हजर में पढ़ता है, जो घर में पढ़ता है। सफर में तो हर चीज अपसाइड डाउन हुई होती है, कुछ समझ ही नहीं आता, वक्त नहीं बाज दफा पता चलता है, लेकिन जिनका दिल नमाज में लगा होता है वो नमाज के लिए तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि मगरिब और ईशा इकट्ठी पढ़ी, क्या बड़ी बात है। ये वैसे अदाएं नहीं समझ आती जो हज के मौके पे हैं। यहाँ कहते हैं नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन नमाज पढ़ो, हज पे चले जाएं, आप देखिए अरफात का दिन है जिसको आप इतने इत्तमाम से जाते हैं मनाते हैं, वहां जाके नमाजों के साथ आप क्या कर रहे हैं, जोहर को सिर से पढ़ रहे हैं, पकड़े हैं खड़े हैं, कोई काम भी नहीं, रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, गर्मी है, परेशानी है, कोई नहीं, जोहर के और असर को साथ पढ़ते हैं। फिर मगरिब का वक्त शुरू हो रहा है, सब चलो निकलो अरफात से, निकलो मुजदलिफा, कभी समझ ही नहीं आती। हम कहते हैं निकलना है नमाज पढ़कर, यहाँ नहीं पढ़नी तुमने, वहां पढ़नी है। असल में हज जो ना हमारी मर्जियां तोड़ता है, हमारी अन्ना का बुत तोड़ता है। और आज जो लोगों ने सिर्फ नमाज रोजे का हल बना दिया है, वो कभी भी उस रूह के साथ हज और उमरा कर ही नहीं सकते कि जो असल में उसमें रूह देनी मकसूद है। अल्लाह ताला असल में ये सिखाता है कि जब मैं कहूँ करो तो करो, जब मैं चाहूँ रोको तो रुक जाओ। फिर आप देखिए कि इतना इंसान थक चुका होता है अरफात से मुज़दलिफा आने की वजह से, बाज़ दफ़ा पैदल जाना पड़ता है, ट्रैफिक जैम होता है, जो भी हर एक का अपना एक्सपीरियंस होगा माशाल्लाह जो हज कर चुके हैं, तो नमाज आपने जाके मुज़दलिफा में ही पढ़नी है। वहां तो जरा सा 19 से 20 हो जाए तो लोग मसले पूछते हैं, दम दे दें, कुर्बानी करें, हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं। जो ही उधर से जहाज पे सवार होते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, फिर ये फर्ज नमाजों का भी कोई मसला नहीं, और शादी ब्याह के किबले भी फर्क है। तो असल जो चीज है ना वो ये सीखने की है कि इंसान अल्लाह के हुक्मों को माने। अब आप देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अल्लाह के नबी अरफात से निकले तो मुज़दलिफा में आके अपनी नमाज पढ़ी। आज पूरी दुनिया से जो लोग हज करने आते हैं वो यही काम करते हैं ना, कोई इसे अपोजिट क्यों नहीं करता कि देखो अरफात तो भर गया, इतने जो लोग हैं तो मैं ऐसा करती हूं, मैं पहले मुज़दलिफा में चली जाती हूं, इधर के रिचुअल करके मैं अरफात आती हूं, चले मैं मीना में नहीं जाती, सीधा मक्का चली जाती हूं। वहां तो वो चार पांच दिन यूं बंदा ऐसे होता है ना जैसे लकीर का फकीर बना हुआ है। अल्लाह कहते ये सीखो, तवाफ करते तो क्यों सीखो, क्या कर रहे हो, इन सलाती व नुसुकी, यानी हज और उमरा भी मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में वो नहीं है इस वक्त जो करने की जरूरत है। बाज़ दफा मैं लाखों रुपया देखती हूँ, लोग लाखों रुपया से बना अपने मुल्क का रुपया लगाते हैं हज और उमरे के शौक में, लेकिन आप उनको इल्म के लिए बुलाएं तो बहुत कम में आते हैं। सीख के हज करना या उमरा करना और बगैर सीखे करना, इसमें वही हिसाब है जो शुरू में हमने बात की, पूरी तैयारी के साथ कहीं जाना या ऐसे ही उठा के कोई बिस्तर से निकाल के आपको ले जाए। बिलीव मी रियली, कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे वहां पहुंचे होते हैं कि जिनकी नमाज भी ठीक नहीं होती, बेचारे मसले ही पूछ रहे होते हैं, घबराए ही होते हैं, हाँ ये हो गया दम तो नहीं, हाय बाल नजर आ गया दम तो नहीं, चेहरे पे कपड़ा लग गया दम तो नहीं है। तो इसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इल्म को लेने की तौफीक दे, और इसके बाद जब भी कभी अल्लाह हमें हज उमरे पे ले जाए, हम जाने से पहले भरपूर तैयारी के साथ जाएं और इन मसाइल को समझ कर जाएं। अगला बाब देखिएगा, गसलुल वजही बिल यदैनी मिन गरफती वाहिदा। गसलुल वजही, चेहरे को धोना, बिल यदैनी, दोनों हाथों से, मिन गरफती चुल्लू वाहिदतिन, एक, यानी एक ही चुल्लू भर पानी है, बस उससे हाथों को धो लेना, उससे मुंह को धो लेना, ये भी जायज है। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा अन्नहु तवद्दा, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने वजू किया, फगसल वजहहू, फिर अपना मुंह धोया, अखज़ गरफता माई, फिर इसी तरह का एक चुल्लू लिया पानी का, फिर मद मजा, फिर उससे कुल्ली की। मद मजा क्या था, कुल्ली करना, जो हम मुंह में पानी डाल के छोड़ते हैं। बिहा साथ उसके, फिर उसके बाद वस्तन शका, फिर उसके बाद नाक में पानी डाला, वही जो हम वजू करने का तरीका है। सुम्मा फिर अखजा, पकड़ लिया गरफता एक चुल्लू में माइन पानी का, फजाला बिहा हा कजा, फिर इसी तरह आपने एक दफा फिर किया, यानी आपने एक चुल्लू पानी लिया, हाथ से मिलाकर इससे मुंह धोया, फिर एक चुल्लू लिया अपना दाया हाथ धोया, और इसी तरह से अदाफहा इला यदिहिल उखरा, फिर दूसरे हाथ को धोया, फगसला बिहा वजहू, फिर अपने चेहरे को धोया, सुम्मा खज़ा गरफत मिन माय, फिर पानी का एक चुल्लू लिया, फगसला बिहा यदहुल यमना, फिर उससे अपना बाया दाया हाथ धोया, सुम्मा खज़ा गरफत मिन माय, फिर आपने अपने हाथ में पानी लिया, फगसला बिहा यदहुल यसरा, फिर उससे बाया हाथ धोया लेफ्ट, सुम्मा मसखा, फिर उसके बाद अपने मसख किया बिरासी ही अपने सर का, सुम्मा खजा, फिर लिया गरफा चुल्लू में माई पानी का, फरशा अल्लाह रिजली हिल यमुना, फिर उसको बहाया अपने दाएं पांव पर, हत्ता यहां तक के गसलहा, उसको धोया, सुम्मा खजा गरफतन उखरा, फिर आपने पानी लिया दूसरे हाथ में, और फगसल बिहा यानी रिजलहुल युसरा, फिर उससे धोया दूसरे को यानी बाएं को, सुम्मा काला, फिर कहा, हा कजा राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दा। ये है वो तरीका कि जिसको मैं जिस पे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते देखा। रवाहुल बुखारी। आप देख रहे हैं कि इस एक हदीस में पूरे वजू का तरीका आ गया। अगर आप चाहें तो हम इस पर अभी भी बात कर सकते हैं, या अगर एक दो दस और, यानी इसमें आपको तरीका समझ आ गया, जो बहुत आपको शायद अजीब लगा होगा कि एक चुल्लू भरते हैं और उसी से एक काम कर रहे हैं, फिर दूसरा चुल्लू भरते हैं तो दूसरा। चुल्लू क्या होता है, दोनों हाथों को जोड़ना, ठीक है, और बाज दफा एक हाथ से, यानी जस्ट लाइक ऐसे करना, इससे भी साबित है। तो हम इंशाल्लाह चंद रिवायतें और पढ़ लें ताकि आपको एक हदीस समझ आएगी, अब दूसरी भी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे इसका वजू का पूरा तरीका आपको बताएंगे यहाँ अल्लाह के हुक्म से। फिर अगला बाब देख लीजिए, मा यकुल इंदल खला, बैतुल खला जाने की दुआ, यानी जब वॉशरूम में जाएं यूज करें तो फिर क्या करें। अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कल, हजरत अनस से रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे बैतुल खला में, ये जो लफ्ज हम बोलते हैं ना बैतुल खला, बैत कहते हैं घर को, खला खाली करना, खुलासी लेना, यानी गंदगी दूर करते हैं ना इंग्लिश में एक्सक्रीशन के मानों में, कि जब अपनी बॉडी से कुछ चीजें एक्सक्रीट करना चाहते हैं तो उस जगह पे जब अल्लाह के नबी जाते तो कौला कहते। आप सब भी दोहरा लीजिए मेरे साथ,
अल्लाहुम्मा
इन्नी आऊज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी बेशक मैं आऊज़ु पनाह में आती हूँ बिका तेरी, मिन से अल खुबूसी नापाक जिन्नों, वल खबाइस और नापाक जिननियों से, यानी ये मुज़क्कर है खुबूस और खबाइस मुअन्नस है। अब ये जो जिननियों का लफ्ज हम बोलते हैं ये हम अपनी समझ के लिए बोलते हैं, लफ्जी मतलब यही है कि नापाक चीजों और इसी तरह उनकी नापाकियों से तेरी पनाह में आते हैं। अब आप देखिए कि ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मांगते थे। पहली बात देखिए कि शैतान का टेस्ट बड़ा गंदा है, वो हमेशा गंदी जगहों पे रहता है, उसको फिजिकली भी जो गंदगी होती है, फिल्थ है और ट्रैश है, वो अच्छा लगता है, और मॉरली भी उसको फिल्थी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक उसको यानी क्लब्स और शराब और कबाब और रंग और साज आवाज, ऐसी जगह जहां शैतान के काम अच्छे हों उसको वो अच्छी लगते हैं। जब एक इंसान जिस्म बाहर होता है, जैसे अब मैं और आप बाहर हैं इस वक्त, नंबर एक हम दुआएं पढ़ते हैं, सुबह शाम की दुआएं भी, आयतुल कुर्सी भी है, दूसरी बात हम कवर्ड होते हैं, ये बड़ा गहरा नुकता है, जब हम कवर्ड होते हैं ना तो शैतान का वार हम पे नहीं होता। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे सर्दी है तो जिस्म कवर्ड होगा तो है तो सर्दी बाहर लेकिन हमारे जिस्म तक नहीं पहुंचती, या बाहर कोई जर्म्स हो और आपने अपने मुंह पे कोई मास्क लगा लिया तो वो जर्म्स नहीं जाते ना। जो ही हम बाथरूम में जाते हैं, नंबर एक कि हम बाथरूम में अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, दूसरी बात है हम जिस्म से कपड़ा हटाते हैं अपनी जरूरत के लिए, जो ही जिस्म से कपड़ा हटा शैतान नाचता हुआ हमारे ऊपर आ जाएगा। इस्लाम में जो न्यूडिटी को नापसंद किया गया, वल्गर ड्रेसेस को, गंदे कपड़े पहनने से और जिस्म भी झलके पतले और ऐसे वैसे, उसके पीछे हिकमत ये है कि जब कोई औरत या मर्द अपने सतर का एहतमाम नहीं करता, उसका जिस्म झलकता है, फौरन शैतान उस पर आता है, फिर वो कभी उसको बहका देगा, कभी पहले तो नचवाएगा और क्या कुछ करेगा, बाद में घर आके डिप्रेशन के दौरे डलेंगे और न जाने क्या होगा। तो अंदर जानकर हम पनाह ले लेते हैं। यहाँ ये याद रखिए कि आज के दौर में जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टॉयलेट्स मौजूद हैं, उसके दरवाजे भी हैं, लॉक्ड है, तो दरवाजे से अंदर जाने से पहले बाहर पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारे टॉयलेट भी गंदे नहीं है। आज जो ये बहुत शिद्दत पे लोग चले जाते हैं ना वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम के बाहर, तो वॉशरूम आज क्लीन है आपका। देखें ना, अगर आप अभी सफाई करें तो आपके बाहर कॉरिडोर और वॉशरूम में क्या फर्क है। आप पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह, माउ तहूरा, पानी पाक करता है, पानी पाक कर देता है आपकी जाहरी को गंदगी नहीं। आपने डिटर्जेंट डाले, सोप डाले, जिफ डाला, जो भी डाला, साफ हो गए, ठीक है। लेकिन पहले दौर में गंदगी वहां पड़ी रहती थी, जैसे आपने भी कभी आज से 20 25 30 साल पहले देखा होगा ये कुछ। तो लिहाजा बेहतर है कि आप बाहर ही पढ़ें, लेकिन बरहना होने की हालत में और गंदगी की हालत में पढ़ने से बेहतर है कि आप बाथरूम में जाने से पहले पढ़ लें, ठीक है। तो ऐसी ये शऊर की बात है, इसको पढ़िए। चलिए, यहां तो सिर्फ इतनी बात है, ये बताइए कि बाथरूम से बाहर आने की क्या दुआ है। सब पढ़ दें, गुफराना का, बिस्मिका गुफराना का। अब गुफराना का क्यों कहा? बाथरूम से निकले, हम कोई फिल्म देख के थोड़ी निकले हैं जो हम कह रहे हैं गुफरान का, अल्लाह तेरी बख्शिश चाहिए जी। इतनी देर अल्लाह तेरा जिक्र नहीं कर सकी, इस पे तू मुझे माफ कर दे। और अल्लाह, हो सकता है कि मैंने वक्त ज्यादा लगा दिया हो, आज तो बाथरूम में जाके मैगजीन ना पढ़े और वहां जाके चेक, आगे तो लोग मैगजीन पढ़ते थे, अब जाके वहां मैसेज चेक करते हैं कि फारिग बैठे साथ मैसेजिंग कर लें, तो अवॉइड करना चाहिए। आप देखिए कुछ लोग वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते हैं ना, सिर्फ एक छोटी सी बात, हम कहां मरना चाहेंगे। जहां बंदा ज्यादा लगाता है वक्त, वहां चांसेस बढ़ जाते हैं ना उसकी मौत के आने के। तो क्या हम वॉशरूम में मरना चाहते हैं, हम ऐसी गंदगी में मरें? तो ये वो जगह है जहां से बस खुलासी छुड़ाएं और वापस आएं। अब मसला क्या है कि जब पैसे इतने लगाए हैं बाथरूम पे, तो अब इस्तेमाल ना करें। जब घर बनते हैं, यहां तो मजबूरी है कि सीधी सीधी चीजें हैं, लेकिन अपने मुल्कों में जाके देखें सबसे ज्यादा पैसा बाथरूमों पर लगता है। यानी गोया के शैतान के बेडरूम पर सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। हमारा बेडरूम सादा सा, शैतान का बेडरूम इतना है। कौन सा शैतान का? बाथरूम है ना। तो वहां जब पैसा लगाया, फिर उसमें सारे कुजी कुजी चीजें भी हैं, तो फिर जाके अंदर दिल तो लगेगा। वहां फिर डेकोरेशन पीस भी लोग रख देते हैं, भाई इसकी क्या मुसीबत है, वो मैचिंग है, रख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इन चीजों को बस ऐसा सिंपल सा रखें कि वहां आपका दिल ना लगे, कोई चीज आपको ना लगाए। और मैंने ऐसे बाथरूम भी देखे कि बाथरूमों में म्यूजिक भी, और अब आप ढूंढने ना चले जाएं, और जो शावर है कर्टन उसके अंदर स्पीकर लगे और उसके अंदर MP3 प्लेयर हैं, जो मर्जी गाएं सुने ना। पहले लोग खुद ना गाते थे, अब सुनते भी हैं और गाते भी हैं। तो ये फुरसुदा बातें, मोमिन का ये मिजाज नहीं होता। जिनको किसी की को परवाह नहीं, वो तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को, बहुत सारी और भी खराबियां आजकल हमारे वॉशरूम्स में, लेकिन कम अज कम अपने आप को बचाने के लिए इन सारी दुआओं का एहतमाम करने की जरूरत है। फिर अगला बाब देखिए, वदुल मा इंदल खलाई, बैतुल खला के पास पानी रखना। अब आज हमारी तो टूटियों में पानी आता है, गर्म भी आता है, ठंडा आता है, फिर उसका टैप सेट कर लो, उसका सेट लो कितना प्रेशर है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या है इस हदीस में, अनितने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु मान्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल खला। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैतुल खला में गए, काला, तो मैंने, यानी आपने फरमाया, सॉरी कहते हैं कि ये खुद फरमाते हैं, फवदातु लहू वदुअन। ये क्या आ गया लफ्ज भाई, वदुअन। कहते हैं मैंने वहां रखा उनके लिए वदु रखा, और वधु के पानी रखा, वजू का पानी रखा, वजू का पानी रखा। फकाला, तो आपने बाहर आकर पूछा, मन वदा हाजा, ये किसने पानी रखा है। फाखबिरा, तो मैंने उनको बता दिया। फकाला, फिर आपने कहा, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, ए अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये दुआ तो आपने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास दी थी। आपने देखा कि ये दुआ कब दी थी। दुआएं दिल से निकलती हैं, याद रखिए, जो खिदमत करता है वो हमेशा दुआएं लेता है। खिदमत में अजमत है, बड़े लोग कहते थे कि अल्लाह के नबी को खुशी हुई। एक आप किसी से कहते हैं ये करो, वो भी कोई कर दे तो वो भी ठीक है, वो इताअत है, लेकिन उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। ये वो काम है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और एकदम बाहर आके देखा पानी भी, ये किसने रखा। मुराद ये कि और किसी को नहीं समझ आई, इनको आ गई, अच्छा, तो अल्लाह मफक्के हो बिद्दीन। और आपको था कि हिब्रुल उम्मा का लकब है इब्ने अब्बास का, अल्लाह के नबी ने इनको दुआ दी थी, और आपने कहा तुम्हें से जिसने कुरान की तफसीर पढ़नी है वो इब्ने अब्बास से पढ़ ले। और आज भी इनकी तफसीर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला علم میں برکت دے, ہمیشہ پرانے اسلاف جو ہمارے ان کی تفاسیر کو دیکھا کریں تو آپ کو اس میں سے بہت بڑے بڑے جوہر دکھیں گے. مظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو عام باتیں تھیں, آج کے دور میں بہت الیبوریٹڈ ہیں, حالانکہ میں اس کو بالکل نہیں مانتی. پچھلی دور کی تفاسیر کی الفاظ مشکل ہوتے ہیں, اس لیے بہت سارے لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو بہرحال یہ دعا ملی, آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا دہرا لیں, اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ فقہ دے ان کو دین کی. فقہ سے مراد جہاں سمجھ بوجھ ہے. تو میں بھی آپ کے لیے اور آپ میرے لیے یہ دعا کریں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں دین کی سمجھ دے دے. بہت سارے دیندار ہوتے ہیں, حافظ بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے, لیکن فقہ بالکل اور چیز ہے. اور فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو, یعنی جس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہی کرنا. اگلا باب دیکھ لیں, تستقبل القبلۃ ببول ولا غائط, قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ کر کے نہ بیٹھنا. یہ بہت معروف مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ کیا ٹوائلٹس کا رخ ہم قبلے کی طرف کریں نہ کریں. اس کو پڑھیں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یعنی ان سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, اذا اتا احدکم الغائط, جب کوئی آئے تم میں سے قضائے حاجت کے لیے, فلا پس نہ, یستقبل القبلۃ, وہ منہ کرے قبلہ کی طرف, اور ولا اور نہ, یولیہ زہرہ, نہ اس کی طرف پشت کرے, شرقو او غربو, بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو. اب آپ دیکھیں یہاں مشرق اور مغرب کیوں کہا, کیونکہ مدینہ میں قبلے کا رخ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا. آپ دیکھیں نا, یوں نہ کرو یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے, بلکہ جنوب کی طرف کر لو, یعنی اپنے ملک کی طرف سے مشرق اور مغرب جو ہوگا. اچھا, اب یہ بات ہے تو اس سے اگلی حدیث پڑھیں, اس مسئلے کو بھی آپ پینڈنگ پہ کریں کیونکہ آگے اس سے اپوزٹ بات بھی آئے گی, تو دونوں کو ملا کے آپ کو انشاءاللہ جو آج ہم کریں وہ اس کو دلیل مل جائے گی. باب دیکھ لیجئے, من تبرز علل لبسین, یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے, اس کو دیکھ لیجئے. من جو کوئی تبرزہ فارغ ہوتا ہے, علل اوپر, علا لبنتین دو اینٹوں پہ, یعنی اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت سے فارغ ہونا, کھلی جگہوں میں لوگ بیٹھتے تھے اس کا ذکر ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان بے شک ناسن یقولن, لوگ کہتے تھے, اذا قعدت علی حاجتک, پس جب تم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھو, فلا تستقبل القبلۃ, تو نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو, ولا بیت المقدس, اور نہ بیت المقدس کی طرف, لقد, تو تحقیق, ارتقیتو, میں سوار ہوا, یومن, ایک دن, علی ظہری بیتن, بیت لنا, اپنے گھر کی چھت پر. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا, فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, علی اوپر, لبینتینی, لبینتین لفظ ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, اسی کو ادھر کٹ کر دیں, لبینتینی دو اینٹوں پر, مستقبلن, جن کا رخ تھا بیت المقدسی, بیت المقدس کی طرف, لحاجتی ہی, اپنی حاجت کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسی ہیں اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے پہلے دور میں لوگ کھلی جگہوں پہ جاتے تھے اوپن میں, نہ کہ ادھر ادھر کوئی اور معاملہ ہوتا تھا, تو اس صورت میں سچویشن اور تھی. آج ہمارے آپ کے پاس واش روم کے ارد گرد دیواریں بھی ہیں, اور لٹرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ واش روم ایسے ہیں کہ اس میں کوئی اور پوزیشن ممکن ہی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے لنڈن کے لوگ تو اس سے بہت زیادہ آگاہ ہوں گے. سم ٹائم آپ ہاف باتھ روم جو سیڑھیوں کے نیچے بنواتے ہیں, یا آپ کا کوئی بہت چھوٹی سی جگہ, آپ کہتے ہیں چلے ایک سیپریٹ ٹوائلٹ لگ جائے, اب آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے, تو اٹس اوکے, نو پرابلم. ایز سون ایز جب آپ دیواروں کے اندر ہیں تو ڈزنٹ میٹر, لیکن جب کوئی اوپن میں جائے, جیسے آپ آج کل ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کرتے کیونکہ سفر میں بھی جاتے ہیں تو راستوں میں الحمدللہ پکنک سپاٹس ہیں, ریسٹنگ ایریاز ہیں, اور کچھ نہیں تو میکڈونل کا باتھ روم تو ہے ہی ہے نا, تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے. اوپن میں کریں تو پھر قبلہ رخ منہ یا بیک کرنے سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کا جو عمل ہمیں دکھ رہا ہے یہ اس دور کے حالات کے مطابق تھا. تو جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے خلاصے میں بتائی ہے کہ واش روم کے اندر موجود ہیں آپ, تو پھر اگر قبلے کی طرف پیر ہو گیا, منہ ہو گیا, تو نو پرابلم. کتنی تو بیچ میں جہتے ہیں. ہاں, اسی سے ایک معروف مسئلہ جو میڈ ان پاکستان مسئلہ یا انڈین ہوگا, وہ کیا ہے کہ جی سوتے ہوئے قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے. سنا ہوا یہ آپ نے مسئلہ؟ ٹھیک مسئلہ ہے نا, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जाहिरी ताज़ीम बहुत अच्छी है, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए ताज़ीम भी होती है, लेकिन ऐसी बातों में उलझ जाना और असल को छोड़ देना, नहीं, इसकी कोई रिवायत, कोई सनद नहीं कि किबले की तरफ मुंह नहीं करना। बल्कि एक दौर ऐसा है, आपको होता है कि किबला लोगों के लिए एक ऐसा मरकज था कि एक बच्चा था किबले में पैदा हुआ। तो कहने का मकसद यह है कि ज़ाहिरी ताज़ीम बहुत अच्छी, जान के कोई गुस्से में ना, बुरा कब होगा कोई कहे हाँ मैंने जान के किबले की तरफ मुंह करना है, जान के मैंने किबले की तरफ पाँव करना है, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह ज़ाहिरी तज़ीम तो बहुत है, उसी में से ये एक चीज है। फिर इसी तरह इमाम बुखारी का मौकफ क्या है कि बैतुल खला में कज़ाए हाजत के वक्त किबले की तरफ मुंह या पुश्त करने की इजाजत है। ठीक है, वही बात आ गई। ये पाबंदी कब है? बैरून आबादी, यानी ओपन में जब लोग करते हैं ये मामला, तब होगा। चलिए औरतों की भी एक बात पढ़ लेते हैं कि औरतें क्या करें। खुरूज निसाए इलल बराजी, औरतों का कज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलना। पहले दौर में घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, लोग इसको पसंद भी नहीं करते थे। इवन जब घरों में भी हुए तो आपको पता है कि घर के बैक पे होते थे। आप यहाँ रहने वाले बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि जब घर की विड्थ थोड़ी होती है लेकिन डेप्थ ज़्यादा ना, तो जो आज बहुत सारे लोगों का बैक रूम है, वहाँ पहले बाथरूम होते थे। ये जो गोरे लोग हैं, इन्होंने भी घरों के अंदर नहीं बनाए थे, वो बीच में से जो समझ लीजिए कि लॉन है उसको गुजार के वहाँ जाते थे। लोग इसको मनहूस समझते थे कि घर के अंदर गंदगी और बदबू, और रियली अगर फितरतन देखा जाए, आज तो इंतजाम इतने अच्छे हैं ना, आपके पास फैन भी हैं और पता नहीं क्या क्या फ्रेशनर्स भी हैं और ऑटो स्प्रेस भी हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो लिहाजा बाहर जाते थे, तो मक्का में मदीना में तो हालात ही फ़र्क थे। तो औरतें कैसे जाती थी, हजरत आयशा से सुनते हैं। अनायशा रज़ी اللہ عنہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ازواج تھی وہ رات کے وہ قضائے حاجت کے لیے نکلتی تھی۔ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری عورتیں, فرسٹ لیڈیز آف دی ورلڈ, لیکن وہ کہاں جاتی تھی؟ باہر جاتی تھی۔ رات کو کیوں جاتی تھی؟ پردے کے لیے, ظاہر میں نہ آئے, حیا نہ ہو, خاموشی کا وقت ہے, مرد نہیں ہوتے, اور ایک قسم کی बारी लगी हुई थी। सारे लोग चूंकि ओपन में जाते थे तो पता चला कि औरतें भी गईं तो मर्द भी चले गए, तो इसे अवॉइड करने के लिए वो रात को जाती थी। इजा जब तबर्रस ना इलल मसाने, जब वो मसाने की तरफ जाती थी, वह हुआ सईदुन अफयाह, और वो एक खुली जगह थी, यानी ये जगह का नाम लिखा हुआ है। और मसाने मसना, आपने देखा पीछे कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ आया, यानी कैसी इमारतें बनी हुई थी और उसके साथ एक खुली सी जगह थी, वहाँ जाती थी। वह सईदु अफ्यह, वो एक जगह थी वहाँ खुली सी। फकान उमरु, और थे उमर यकूल नबी जी, कहते थे नबी को। सुभान अल्लाह, उमर की गैरत आज अल्लाह हम सब के मर्दों को दे दे। उनको रात को औरतों का निकलना भी पसंद नहीं था कज़ाए हाजत के लिए, तो आके अल्लाह के नबी से कहा करते थे, उहजुब निसाक का पर्दा करवा दीजिए अपनी औरतों को। फलम यकुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़लू, लेकिन रसूलुल्लाह ऐसा ना करते, यानी जब हुक्म नहीं था आया हुआ पर्दे का, और हज़रत उमर को गैरत आती थी कि इन औरतों को कोई देख ना ले, तो लिहाजा अल्लाह के नबी ना करते। अब हुआ क्या, एक दिन फखरजत सौदा इब्नत जमा, एक दिन निकली सौदा बिनते जमा, ये नबी सल्लम की सेकंड वाइफ थी, बूढ़ी औरत थी, और एक दिन वो कज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली। जौजु नबी जी, जो नबी की बीवी थी, लैलतन रातों में, मिनल लयाली एक रात, अल ईशा ईशा के बाद, यानी ईशा के वक्त हजरत सौदा जो थी कज़ाए हाजत के लिए निकली। वकानतिम रात तवीलतन, वो एक तवील कामत औरत थी, यानी लंबे कद की खातून थी। मुराद ये कि जरा खाल हुलिया उनका आम औरतों से फर्क था तो पहचान जाती थी, होता है ना अनयूजल हाइट हो या बंदा मोटा ज्यादा हो या लंबा ज्यादा हो तो दूसरी औरतों में पहचाना जाता है। तो खैर वो लंबी थी तो हजरत उमर पहचान गए। फनादा उमरू, तो उमर ने उनको पुकारा, अला कद अरफ ना कर या सौदा, तू आगाह रहो सौदा, हमने तुमको पहचान लिया है। हिरसन अला यंजिल हिजाब, इससे हजरत उमर की यह ख्वाहिश थी कि हिजाब का हुक्म उतरे। ज़फ़ानज़ल्लाहु अज़्ज़ वजल्लल हिजाब, तो नाजिल किया अल्लाह ताला ने पर्दे का यह हुक्म। ये बुखारी की रिवायत है। हजरत उमर के मांगे हुए पर्दों का आज औरतों ने क्या कर दिया? आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जन्नत दिखाई गई, और वहां एक महल था जहां हजरत उमर का नाम लिखा हुआ था। तो अल्लाह के नबी वहाँ से पलट आए, पीछे उसके कोई औरत थी और मतलब वहाँ बैठी हुई थी। तो बाद में अल्लाह के नबी ने जब ये ख्वाब बयान किया तो आपने कहा कि मैं उमर के महल के करीब भी नहीं गया, पलट आया कि मुझे उमर की गैरत याद आ गई, क्योंकि उमर ये ना कहे कि मेरे महल में कोई औरत थी, तो अल्लाह के नबी आप क्यों गए? मैं सोचती हूँ कि अगर हम वाकई हजरत उमर की इस मिजाज को आज लाकर देखें तो हमारे अपने कितने मसले खत्म हो जाएं। और यहां से ये भी पता चलता है कि रात को भी वो पर्दे में गई हुई थी, तभी तो उमर ने कहा क्या सौदा, पर्दे के बावजूद तुम्हें पहचान गया। यानी उमर को गुस्सा आ रहा होता था कि औरतें क्यों निकलती हैं। देखिए, जिसके अंदर गैरत होगी ना, उसको औरतों का बापर्दा निकलना भी पसंद नहीं होगा, औरतों का तो क्या मर्दों का पसंद नहीं होगा। तो लिहाजा ये सारी चीजें देखकर हमें वो मिजाज समझ आता है जो हमारे दीन का है और जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें रखता है। अब आज तो ऐसी कोई चीजें हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं समझते, लेकिन इस पे कियास करते हुए हम बाकी दूसरी चीजों को तो सामने रख सकते हैं। कोई सवाल है आपके जहन में इन सारी बातों के बारे में जो भी हमने पढ़ा? जी आप।
जैसे हम हरम में जाते हैं ना, तो वहाँ ये मुशाहदे में आता है कि लोग सो रहे हैं, तो सोते अजान हुई है, इकामत हुई है, वो
जी इनका सवाल है कि हरम में अक्सर लोग बैठे होते हैं और अमूमन लोग जो बैठे होते हैं वो अगली नमाज के इंतजार में होते हैं, फिर बैठ के ऊँग भी लगती है तो फिर उठ जाते हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है, सुन लीजिए। इस तरह बैठने से अगर ऊँग आ जाए तो वजू नहीं टूटता। बैठे बैठे ऊँग आ गई, आप अपनी जगह पे बैठे थे इस तरह कुर्सी पे या गाड़ी में थे और एक दफ़ बस ऊँग आया, झटका आया, उठ के नहीं टूट। इसकी हिकमत है, मैंने किताबो तहारा जब पढ़ाई थी स्टूडेंट्स ने सुनी हुई ये बात। अल्लाह सुबहाना तला ने हमारी बॉडी में इस तरह का चेक, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के अंदर वो एक दफ़ा से वो बंद हो जाता है। जब कोई लेटता है ना तो वो वॉल खुल जाता है, लेटते ही हवा खारिज होने के चांसेस ज्यादा। रात को आप होता है हम सोते हैं तो हम सब की हवा निकलती है, सुबह आप कभी उठ के फौरन जब बैठ के जब बाथरूम में जाते हैं तो भी जिस्म से हवा निकलती है। तो जब लेटते हैं ना तो वो जिस्म से हवा निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब बैठे हैं, अगर बैठने में नींद भी आ गई तो चांसेस हैं कि हवा जिस्म से नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ वॉल आपका क्लोज है। ये असल हुक्म है। हमारे लिए जो आखिरी मसला वो यही है कि हम अपने आप को देखें कि हमने बैठ के अगर टूट बैठे हैं, ऊंग आ गई हल्की सी। सहाबा खुद कहते हैं कि हम मगरिब के बाद ईशा के इंतजार में बैठे होते थे, ऊंगते थे, बैठते थे और इतने में मेरी आंख भी लग जाती थी और मुअज्जिन अजान देता था और हम उसी वजू से उठ के नमाज पढ़ लेते। ठीक है, चलिए। जजाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।